السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ہے انہیں کے دم پدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں. نظر ایک چمن سے دوچار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. اس سے پہلے کا مصرع ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. حقیقت یہ ہے، زبان اللہ دے، اگر زبان دے، آپ بولیں گے سب کے پاس زبان ہے، زبان ہے، لیکن زبان وہی ہے جس سے ذکر مصطفیٰ ہو. یہ زبان اللہ نے دی ہے تو ذکر مصطفیٰ کے لیے دی. کیوں؟ رب ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بات یہ ختم نہیں ہوئی، پہلے یہ بتایا کہ درود کا ذکر کتنا اہم ہے. इसलिए फरमाया कह लोगों तुमको मैंने दुरूद का जो हुक्म दिया है पहले उसकी अजमत को जहन में बिठा लो कि अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है और अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं सब दुरूद भेजते हैं। तुम क्यों खामोश रहो? अल्लाह की सुन्नत भी अदा करो, फरिश्तों की भी सुन्नत अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए लोगो, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो। एक सवाल ये है, अल्लाह ताला दुरूद पढ़ रहा, दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, तो हमको ये हुक्म देता कि तुम भी दुरूद पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है, फरमाया दुरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो। ये दो दो हुक्म है, सलाम भी हमको पढ़ना है और दुरूद भी। इसी का झगड़ा आज उठा कर रखा, दुरूद सलाम क्यों? अल्लाह ताला दुरूद पढ़ दुरूद भेजता है, हमको दुरूद भी पढ़ने का हुक्म दिया है और सलाम भी पढ़ने का हुक्म दिया है। जनाबे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस जबान से होता रहे, इसलिए अल्लाह ने यह जबान आला हज़रत फरमाते हैं देहन में जबान तुम्हारे लिए, देहन में जबान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये बदन में जान जो है मुस्तफा पर निसार होने के लिए। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो बदन में जान भी नबी के लिए है और जबान भी नबी के लिए है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं जबान और जान सब उन्हीं के लिए है, हमारे यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मोमिन की जिंदगी है, जबान उनके लिए, जान उनके लिए, यहां आए उनके लिए, उठोगे भी इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ते हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी ऊंची है, ये बाद में बताऊंगा। हम मीलादुल नबी करके अपनी उस निस्बत को मजबूत से मजबूत करना चाहते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में नबी के साथ लिख दी है। निस्बत बड़े के साथ बड़ी होती है, और निस्बत का फायदा क्या होता है बहुत संजीदगी के साथ सुनिए। इंसान की निस्बत नबी से हो जाए तो बहुत ऊंचा दर्जा है। मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, एक कपड़े की निस्बत अगर नबी से हो जाए तो उस कपड़े की करामत और अजमत सुनो। और ये मौलाना अहमद रजा साहब ने नहीं बयान किया, मौला ने बयान किया। वो मौला जो सबका मौलाना, रब इरशाद फरमाता है रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह वाफु अन्ना वगुफिर लना वरहमना अंत मौलाना। ए रब, तू हमारा मौलाना है, हमारा मौला है। ये किसी दुनिया के मौलाना की बात नहीं है जो सारी कायनात में जिसको चाहता है मौलाना बना देता है। अपने नबी को भी मौलाना बनाया। आप दुरूद कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना। वो मौलाना हकीकी है, उसके करम से मुस्तफा हमारे मौला और इनका फैज मिला तो हमारे जितने बुजुर्गाने दीन है वो सब मौला है। उसका इरशाद है हजरत यूसुफ अलैहि सलात व तस्लीम बड़े हसीनो जमील थे और हमेशा हसद जो है ये लोगों को तबाह करता है और ऐसी ऐसी स्कीम और प्लानिंग बनाते हैं कि किसी की जान लेते हैं, किसी की इज्जत आबरू लेते हैं। हसद बहुत बुरी चीज है। हजरत इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, एक बुजुर्ग को तमन्ना थी कि मैं शैतान से मुलाकात करूं। बुजुर्गों की भी तमन्ना अलग अलग है। एक दिन शैतान फज्र की नमाज के बाद जब वजीफे में वो थे आया, अस्सलाम वालेकुम। आप ये न समझे शैतान सलाम नहीं करते, पहले थोकता है। बुजुर्ग ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं वो हूं जिससे मिलने की बहुत पुरानी तमन्ना आपके दिल में मचल रही थी। अच्छा इब्लीस हो? हाँ हाँ बैठो, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये बता कि दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? ये शैतान से मसला पूछ रहे हैं बुजुर्ग। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनके जमाने तक और उनके जमाने से लेकर इन दम तक और इन दम से लेकर इन दम तक यानी कियामत तक ये जिंदा रहेगा, सर्टिफिकेट लेकर आएगा। अल्लाह ने फरमाया जा तू कियामत तक जिंदा रहे। इसलिए ऐसी पर्सनालिटी कोई नहीं है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और उन बुजुर्ग तक उनके सवाल का जवाब दे। फरमाया अच्छा बोल, दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या? उसने बुरे को भी देखा था, अच्छे को भी देखा था, तो कहता हजरत सबसे बुरी चीज हसद है। तो बुजुर्ग चौंके और कहने लगे मैं तो दुनिया में सबसे बुरा तुझको समझता और तू हसद को बुरा समझ। कहा हजरत आप यही नहीं समझे, अगर हसद न होता तो मैं शैतान नहीं बनता। शैतान बनाया किसने? हसद ने। अब समझे हसद करना कितनी बुरी चीज है। शैतान से भी उसका एक दर्जा ऊंचा है। अब जो हसद करे वो खुद अपना फैसला करें कि हसद करने वाले क्या हैं। मैं नहीं बोलता हसद करने वाले क्या हैं। सबसे पहले हसद करने वाला शैतान है और हसद किया तो शैतान बना। ए लोगों, आप शैतान तो नहीं बनना चाहते हैं? नहीं ना बनना चाहते। तौबा कर लो कि आज से हम किसी से हसद नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने ये तौबा कर ली तो आप बड़े पाकबाज बन जाओ, बड़ा नूर मिल जाएगा। और अल्लाह के रसूल नूर बन के आए हैं, आपकी निस्बत मजबूत हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था हसद बहुत बुरी चीज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, सब 12 भाई थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत चाहते थे। ये इंसान की साइकोलॉजी है कि अच्छी चीज को वो पसंद करता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे साहबजादों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। बेटों के दिलों में हसद पैदा हुआ। सबों ने कहा ये यूसुफ जब तक घर में रहेगा बाप की तवज्जो यूसुफ पर रहेगी। तो सबों ने कहा क्या करना चाहिए? बोले किसी बहाने से इसको घर से आउट कर दो, कहीं कुएं में डाल दो, कत्ल कर दो, जंगल में छोड़ दो, न रहे बांस न बजे बांस। ये तय हो गया, ये हसद है। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की अब्बा हम पिकनिक मनाने जंगल में जा रहे हैं, यूसुफ छोटा है, हम चाहते हैं कि ये भी इंजॉय करे, हमारे साथ पिकनिक मनाए, हमारे साथ जाने दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना अंदेशा जाहिर किया कि देखो तुम लोग शिकार करोगे, इधर उधर भाग दौड़ करोगे, और यूसुफ इस लायक नहीं है, ये तुम्हारे सामान के पास बैठा रहेगा, कहीं कोई दरिंदा आए और इस छोटे से बच्चे को चीर फाड़ ना खाए। उन्होंने वादा किया, कसम खाई कि हम इसकी पूरी निगरानी करेंगे और वादा करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, आप लोग जानते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। एक काफिला आया और हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला, मिस्र में ले जाकर बेच डाला। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी तकलीफें उठाई, लेकिन रब ने इस तकलीफ के बाद जो आसानियां पैदा की, अल्लाह का हुक्म है, ऐ तकलीफ झेलने वालों, रब फरमाता है इन्फा इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक हर परेशानी के बाद आसानी। फिर फरमाता है सुनो, हर सख्ती के बाद आसानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की, बचपन से जवान हो गए, तकलीफ झेल रहे हैं, जेल में गए, परेशानियों पर परेशानियां उठाया, लेकिन मुस्कुराते रहे। अल्लाह ने जब उन पर आसानी की तो मिस्र के बादशाह बन गए। और जब मिस्र के बादशाह बन गए तो उनके जमाने में बड़ा भयंकर कहत पड़ा। कहत जानते हैं इसको कहते हैं? भूखा, भूखा, दुष्काल, दुष्काल पड़ा और हर जगह भूकाल पड़ा, भूखे लोग मरने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र से करीब एक जगह कनान है, वहां देहात में रहते थे, और भाइयों से अपने बेटों से कहा मिस्र जाओ और बादशाह से कुछ मदद लेकर के आओ। सब भाई वहां गए और याकूब अलैहिस्सलाम के सब बेटे दरबार में खड़े हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ताज पहने हुए शाही तख्त पर शाहाना रोबो जलाल के साथ रौनक अफरोज, भाई सब के सब आपसे अपनी विपत, अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम यूसुफ के भाई हो? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे बादशाह हमको पहचानता है, ये नहीं समझ रहे कि यही यूसुफ है, वो तो समझे कुएं में डाल दिया। लेकिन अल्लाह जिसे बचाए उसे कौन बर्बाद कर सकता है? मुसलमान, सूरह यूसुफ की इस वाक्य से इबरत हासिल करो। दुनिया तुमको अगर बर्बाद करना चाहे और मुस्तफा से तुम्हारी निस्बत सही है, मैं लिख देता हूं तुम कभी बर्बाद नहीं हो सकते। अपनी निस्बत को मजबूत करो। सब खुश हो गए, बादशाह तो हमको पहचान रहा, परिचय की जरूरत नहीं है। फिर उसमें से एक दो गौर से देख रहे हैं, ये कौन है? एक ने पूछा, अंता यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो? हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मैं ही यूसुफ। और जैसे ही ये मामला खुला तो वो उनका जुर्म, कुएं में हमने इसको बचपने में डाला था, आज तो ये बादशाह है, अब तो ये हमें कत्ल करवा देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। भाई लरजने लगे, आए थे रिलीफ मांगने, अब जान मांग रहे हैं, अब तो हम बचेंगे नहीं। लेकिन नबी का दिल देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुम अल यौम, घबराओ नहीं, आज हम तुमसे कोई बासपुछ नहीं करेंगे। सजा देना तो बड़ी बात है, हम तुमसे पूछेंगे भी नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह है नबी की अदा, और इसी अदा को अगर उम्मती माने तो कोई जरूरत ना।
उसने क्यों ऐसा किया? क्यों करूंगा, ऐसा लगता है कि रुस्तम पहलवान ही बन गए। गुस्सा ऐसा आता नबी की अदा है। भाइयों ने अगर गुनाह किया है, आज पता चला कि यूसुफ बादशाह बन गए हैं और ये कांप रहे हैं, नबी के दिल में रहम है। फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुमसे हम कोई पूछगछ नहीं करेंगे, इत्मीनान रखो।
सबकी जान में जान आई कि बादशाह बहुत रहम दिल है।
हमने जुल्म किया किसके साथ? यूसुफ के साथ। आज पूरा इख्तियार अल्लाह ने यूसुफ को दिया है और बदला नहीं ले रहा, इसी का नाम तो रहमत है जी, इसी का नाम हिल्म है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बिठाया और बोले अब्बा जान कैसे हैं? फौरन बात किया गया। परसों के बाद कोई मिला था और घर का आदमी मिला, पूछ रहे हैं अब्बा का क्या हाल है। तो भाइयों ने कहा हुजूर वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो आपके फिराक में जब से रो रहे हैं, रोते रोते कभी अब यब्दत अइना, उनकी आंखें सफेद हो गई, रोशनी चली गई। हजरत यूसुफ का दिल तड़प गया, अब्बा मेरी मोहब्बत में और मेरे फिराक में रोए, आंखें सफेद हो गई। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि नबी अंधे हो गए, ये नहीं कहा, आंखें सफेद हो गई। क्या अदब सिखा रहा है, नबी के बारे में बोलो तो सोच कर बोलो, आंखें सफेद हो गई। हजरत यूसुफ का दिल तड़प उठा। कुरान फरमाता है कि यूसुफ ने अपना कुर्ता और कमीज निकाला, लिबास बदला और भाइयों के हवाले किया। ये लिबास किस चीज का है? कपड़े का है। और किसने पहना था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबीउल्लाह है, उन्होंने पहना था। अपना कपड़ा उतार करके और भाइयों के हवाले करते हैं। अब कुरान फरमाता है कि हजरत यूसुफ ने फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कूहु अला वजही अबी याति बसीरा, लेके जाओ अब्बा के चेहरे पर मेरा ये कुर्ता डाल देना। इसकी बहुत सी तफसीर है, अभी मैं उसकी तफसीर नहीं बयान कर रहा हूं। इतनी तो वजाहत कर दी रब ने कि वो कुर्ता था, कमीज था। इस हबू में कमीसी हाजा, ये मेरा कमीज, और कमीसी कहा मेरा, किसी और का उतरा हुआ कमीज नहीं है, ये नस है। कमीसी हारा, मेरा ये कमीज लेकर जाओ, वालिद के चेहरे पर डाल देना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अकीदा सुनो, आप फरमाते हैं जैसे तुम डालोगे यज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कूहु अला वजही अबी याति बसीरा, अब्बा के चेहरे पर ये कमीज डाल दोगे तो उनकी आंखों की रोशनी जो खत्म हो गई है वो आ जाएगी। ये अकीदा किसी और का नहीं है, ये नबी का अकीदा है कि कपड़े में ये करामत पैदा हो गई कि गई हुई बीनाई को लौटा दे। और वो कपड़ा किसका है? नबी के बदन से निस्बत रखने वाला कपड़ा। और इस मसले को कुरान ने बयान किया है। किसी में हिम्मत जो ये कह दे
ये मेथालॉजिकल बात है, ये अफसाना है, गढ़ी हुई बात है। बरेली लोग ऐसे ही उड़ाते रहते हैं कि फला कपड़ा धो के पी लिया तो बीमारी भाग गई, ये काम हुआ तो ये हमारा काम बन गया। आओ और कुरान के अकीदे को सुनो, और नबी के अकीदे का ऐलान कुरान कर रहा है, कपड़ा चेहरे पर रखो और बिनाई फौरन वापस आ जाएगी। किसी डॉक्टर की जरूरत भी अहले सुन्नत वलियों को इसलिए मानते, बिना वजह नहीं मानते, निस्बत उनके दर की, उनके कब्रे पाक की, उनके तलवे की धूल सब में करामा। नबी नबी के गुलामों की बात की,
और फिर ये भाई वहां से कनान आए।
अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलम्मा अंजा अल बशीर وَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا। खुशखबरी सुनाने वाला हजरत याकूब के पास पहुंचा, और हजरत याकूब के चेहरे पर हजरत यूसुफ का पहना हुआ कुर्ता डाल दिया, तो अल्लाह फरमाता है فَارْتَدَّ بَصِيرًا فَوْرًا بِنَائِهِ أَبْصَارًا। ये सिर्फ निस्बत है मेरे दोस्त, निस्बत का इनकार करने वाला सख्त गुमराह है, महरूम होता है। कुरान फरमाता है कपड़ा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहना था, हजरत याकूब नबी है उनके चेहरे पर डाला। उन्होंने भी मना नहीं किया, कपड़े से क्या होता है, एक तरफ नबी ले रहे हैं, दूसरी तरफ नबी भेज रहे हैं, दोनों तरफ नबी, इन्होंने भेजा रोशनी आएगी, कपड़ा डाला रोशनी आ गई। आज अगर कोई बिगड़ा हुआ गुमराह है और कोई ताबीज देता है कि पंडित क्या होता, इसी क्या होने में तो सब गड़बड़ हो गया है। मेरे दोस्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उसे तस्लीम कर रहे हैं, चेहरे पर डाल दिया और रब फरमाता है फर्तद्दा बसीरा। यह है निस्बत की वजह से कपड़े में भी करामत पैदा हो जाती है, ये कपड़े का मामला है। और इंसान को हजरत यूसुफ नहीं, हजरत याकूब नहीं, हजरत मूसा और ईसा नहीं, दूसरे अंबियाए किराम से निस्बत नहीं, इस इंसान को सच्ची निस्बत उस नूर से हो जाए जो बारहवीं तारीख सुबह सादिक के वक्त इस शाम से आया कि रब उसकी आमद का ऐलान कर रहा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया, इसकी रोशनी से जो निस्बत हासिल करेगा वो भी बाकमाल हो जाएगा। मुस्तफा का मर्तबा बहुत ऊंचा। ये सुन लिया, एक और आय सुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन ने आपकी कौम पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। हमारे मुफ्ती साहब ये मुफस्सिर भी हैं, पूछो, इतनी तकलीफें दी, इतना जुल्म किया कि लोग परेशान हो गए। जब अल्लाह ताला ने इन्हें दरिया से पार किया, मुल्के शाम पहुंचे, तो इन हजरत मूसा की कौम ने एक अर्जी पेश की कि आप किसी को बादशाह बना दें और वो बादशाह हमारे साथ मिलकर और उस जमाने के फिरौनियों से किबतियों से लड़ाई करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। उसमें भी बड़ा इख्तलाफ है मौलाना, बादशाह मुकर्रर हुआ तो चौंकने लगे, ये ऐसा वैसा, तो रब ने फरमाया नहीं, रब ने इसे बादशाह बनाया है, तो बोलने लगे रब ने जब बनाया है तो क्या निशानी है कि अल्लाह ने इनको बनाया। नबी बोल रहे हैं फिर भी नहीं मानते। बड़े की न बात मानना ये बहुत बड़ा अजाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं निशानी मांगते हो तो रब फरमाता है कि अल्लातिया क्या है वो इन आयता मुल्क क्या अल्लातिया तुम ताबूत फी सकीना तुम मिन रब्बिकुम व बकिया तुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। कुरान फरमाता है तालूत के बादशाह होने की अलामत यह है कि अय्यातिया तुम ताबूत तुम्हारे पास एक बॉक्स आएगा एक संदूक आएगी। उस संदूक की करामत क्या है अय्यातिया तुम ताबूत फी है सकीना तुम मिन रब्बिक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उस ताबूत में तुम्हारे दिलों का चयन है। अगर तुम्हें घबराहट हो तो इस ताबूत के पास चले जाना तुम्हारी घबराहट खत्म हो जाएगी दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी परेशानी की वजह से घबराहट है इस ताबूत के पास चले जाओ और उस ताबूत के सदके में दुआ मांगो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी सुकून मिल जाएगा। कौन कह रहा है रब फरमाता है अय्यातिया तुम ताबूत तुम्हारे पास एक ताबूत है संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से संदूक में तुम्हारे दिलों का चयन है। ये आएगा तो कहां से आएगा ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम। हाँ मैं हजरत मूसा की बात कर रहा हूं। हजरत मूसा के बाद जब किप्तियों ने यहूदियों को सताया तो उस जमाने के नबी ने उनको बताया कि ये बादशाह बनाए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई नबी आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे थे तो अपनी असा जानते छड़ी जैसे मैं लेके चलता हूं अपने असा को वसीयत कर दी महफूज कर लेना। उनके मानने वालों ने एक संदूक बनाया असा रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नालैन पहनकर गोहे तूर पर तशरीफ ले गए थे उस नालैन को भी उन्होंने तबर्रुक के तौर पर रख लिया किसने उसी संदूक में। हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो अमामा बांधते थे उनके इंतकाल के बाद संदूक में वो अमामा भी रख दिया गया। कई तबर्रुकात उस संदूक में रखे हुए थे। उलमा फरमाते हैं इन अंबिया के तबर्रुकात का ये असर था कि उस संदूक के पास खड़े होकर जो दुआ करते थे उस कौम के लोग उनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता था। जिन परेशानियों को दूर करने की दरख्वास्त करते थे अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करके उनके दिलों को चैन देता। बोलो संदूक में कोई नबी था कोई वली आराम कर रहा था। लकड़ी का एक संदूक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर से निस्बत रखने वाले नालैन थे। हम नालैन की अगर ज़ियारत करते हैं तो भी लोगों को अच्छा नहीं होता। और अल्लाह फरमाता उसमें संदूक में चैन था। उलमा इसकी तफसीर और हदीस में बताया कि संदूक में हजरत मूसा के नालैन हजरत हारून की पगड़ी अलवाह तौरात अलवाह के कुछ टुकड़े थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी थी। ये तबर्रुकात ऐसे थे कि बेचैन दिलों को रब फरमाता है चैन आ जाता। तो अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं संदूक में जब जूता लकड़ी अमामा रखा है तो वहां दुआ मांगने की कुरान ने ममानियत नहीं की इजाजत दी है कि बेचैन हो, परेशान हो, चले जाओ, तुम्हारे दिलों को चैन आ जाए। ये हजरत मूसा के मानने वालों ने उस संदूक में रखा। बाद में कुछ ऐसे गुमराह पैदा हो गए थे कि ये संदूक उनसे रब ने छीन लिया था। अब फिर थोड़ा सुधरे हैं तो रब फरमाता है अय्यातिया को मुताबूत, वो ताबूत तुम्हारे पास फिर आएगा जिसमें तुम्हारे दिलों का चैन है। लोगों, वो कब्रे पाक जिसमें गरीब नवाज है, गरीब नवाज का जूता नहीं है, उनका अमामा नहीं है, उनका असा नहीं है। कब्र के संदूक में सहाफा अल्लाह का एक महबूब बनता है। वहाँ जूता का तो मुराद पूरी होती थी, यहाँ तो हजरत ख्वाजा औलादे रसूल हैं जो कब्र पाक में आराम फरमा रहे हैं। तेरी नस्ल पाक में हर बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वहाँ हम जाते हैं तो बिदात नहीं है, कुरान की इस आयत से सबूत मिलता है कि अल्लाह वालों के कदम से नस्बत रखने वाला वाली चीज वो दिलों का सुकून उससे हासिल होता है। ऐ मेरे दोस्तों, तो हम कब्रों पर जाएंगे और इंशाअल्लाह जाते रहेंगे, ये हमारे दिलों की के सुकून का बेहतरीन मरकज है। आला हजरत फरमाते हैं दुनिया में दुआओं के कबूल होने की कई जगहें हैं, उसमें से एक जगह मजारे खाजे गरीब नवाज, जहाँ बहुत जल्द दुआ कबूल होती है। जहाँ जहाँ हमारे औलियाए किराम हैं, कलिया शरीफ में उर्स हो रहा है और आज ही के दिन उर्स हो रहा है, हम 13 तारीख नहीं अभी शुरू हो गया ना, हम उस कलियर शरीफ के कब्र के संदूक में आराम फरमाने वाले साबिर पिया से यहाँ से हम दरख्वास्त करते हैं, सब बेचैन हैं, इनके बेचैनियों को चैन से बदल दे, और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वो वहाँ जा करके उसने अपने बेचैन दिलों का मुदावा मांगा है और उसको साबिर कलियरी उसे नवाजेंगे। ऐसे ही जहाँ जहाँ औलियाए किराम है इंशाअल्लाह वो हमारे लिए बाईस बरकत है। तो निस्बत अगर हो जाती है खड़ाओं को तो उसमें करामत पैदा हो जाती है। हजरत ख्वाजा के पैर की खड़ाऊ करामत वाली थी कि नहीं, कितनी ऊपर उड़ी आप सब जानते हैं, क्यों उड़ी, किसको लाने, हाँ ठपा ठप करके लाके नीचे बिठा दिया, गिराया नहीं, मारा और साथ साथ लेकर आए, इधर उधर मत भागना, ख्वाजा ने बुलाया सब, वो ही लेकर के आए। देखा कि जब खड़ाऊ की जो पैर से निस्बत रखती है ये पावर है तो खड़ाऊ वाला कितना पावरफुल होगा, इसलिए जान उसी वक्त बचेगी कि खड़ाऊ वाले के कदम पर अपना सर रख दो और सर रख कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे गरीब नवाज ने इसका नाम रखा अब्दुल्ला बयाबानी। ऐ लोगों, खड़ाऊ असा ये बड़ी कीमती चीज, इसीलिए बुजुर्गों के सर के अमामे में भी हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अमामे में बड़ी करामत थी। अब तफसील में नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ जब बेजान चीज नबी से लग जाती है तो शानदार बन जाती है। ऐ सुन्नियों, तुम भी नबी के नूर से ऐसे चमक जाओ जैसे आला हजरत चमके थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, इसलिए कि मेरे नबी सबसे ऊंचे। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, और सबसे बाला वो वाला हमारा भी। ऐसा कोई कायनात में न फरिश्तों में है, न जिनों में है, न यहाँ है न वहाँ है, एक अल्लाह ने ऐसा बुलंद बाला बनाया है मेरे मुस्तफा को। आला हजरत एलान फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। फिर से रंज करते हैं, ऐ लोगों तैयार हो जाओ, अपने जहन को इकट्ठा करो, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारी दुनिया को चैलेंज है। तुम सोच सोच करके पूरी जिंदगी किसी ऐसी चीज को लाओ और ये ऐलान करो ये सारी दुनिया से ऊंचा है, ये सारे ऊंचों से ऊंचा। समझिए जिसे है उस ऊंचे से, आपके नजदीक सबसे ऊंचा कौन है? आसमान है कि नहीं? आसमान ऊंचा है, कोई चीज ऊंची ना। आला हजरत फरमाते उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा, आसमान से भी ऊंचा हमारा नबी, सिदरा से भी ऊंचा हमारा नबी। अरे ला मकान सबसे ऊंचा है, मुस्तफा उस पर खड़े हैं तो अर्श नीचे, अर्श सबसे ऊंचा है, अर्श पर खड़े हैं, आपका वजूद ला मकान में है और अर्श आपके कलबों के नीचे है, सबसे ऊंचा अर्श है। लेकिन उस अर्श के बारे में भी यही है कि मुस्तफा उस ऊंचे से भी ऊंचे, सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए किसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब नबियों में तलाश कीजिए सबसे ऊंचा नबी कौन है। अगर कोई कहे आदम है, इसलिए कि वो सबके बाप हैं, सारे नबी उनकी औलाद हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं इस ऊंची शख्सियत से भी ऊंचे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए तो हुजूर ने फरमा दिया कि कुंतो नबियों व आदमो बैनर रूहे वल जसद। ए लोगों, मैं तो नबी उस वक्त था, अभी आदम पानी और मिट्टी की शक्ल में। तो जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की शक्ल में थे, रूह भी नहीं पड़ी थी, मेरे मुस्तफा फरमाते मैं ऊंचा से ऊंचा, मैं नबी था। तो मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को अगर सेलेक्ट करते हैं कि ये सारे नबियों में ऊंचे हैं, तो मुस्तफा फरमाते हैं आदम से भी ऊंचा मैं हूँ। आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अगर ईसाई कहे हमारे नबी सबसे ऊंचे हैं, चलो मान लेते हैं ऊंचे हैं, लेकिन इस ऊंचे से भी कोई ऊंचा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, कुरान मजीद फरमाता है वल काल ईसा बनु मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकल लिमा بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد। حضرت عیسیٰ کو اگر کوئی کہے سب سے نبیوں میں اولول العزم اور اونچے ہیں، تو اے میرے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مسیحائی پر ہم قربان ہو جائیں، آپ ہی بتا دیجئے कि आपने अपने ऊंचाई की जहां शहादत दी इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह का रसूल हूं, और जो तौरात गुजर चुकी है उसका तस्दीक करने वाला हूं, ये अपनी ऊंचाई का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आखिर में फरमाते हैं मुबश्शिरन बिरसूलियाती मिन बाद इस्मुहू अहमद, लेकिन मुझ जैसे ऊंचे के बाद भी एक आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। नाम तक बता दे जिसका नाम अहमद है। अब आला हजरत इस आयत की रोशनी में झूम कर फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे अरे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक एक बात अगर मैं जिक्र करता चाहूं तो आपको यकीन हो जाएगा कि आला हजरत का एक शेर ये सारे आयतों का ये एक निचोड़ है। हर नबी की ऊंचाई तिल पर रसूल फद्दलना बाहुम अला बाहुम। लोगो हमने रसूल हमने भेजे बहुत ऊंचे, फरिश्तों से भी ऊंचे, इंसानों से ऊंचे, जिनों से भी ऊंचे फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, लेकिन इनमें भी हमने बास को बास पर ऊंचाई दी है। वो सबसे ऊंचा जो दर्जो बुलंद है वो जात है आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक सिफत ऊंचाई की हो गई और एक सिफत अच्छाई की। एक सिफत अच्छाई की है, आला हजरत फिर से ऐलान करते हैं, ये तो साबित हो गया। अब बोलो सबसे अच्छा तो सबसे औला बताया था, सबसे आला उसकी ये तफसीर है। ऊंचे भी हैं, अफजल भी हैं, औला भी हैं। तो फरमाते हैं सबसे सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। लाओ कौन दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है बोलो, खुदा की कसम हम साबित कर देंगे कि जितने भी अच्छे हैं सबको जो अच्छाई मिली है ये सदका है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे अच्छे बारह रबीउल अव्वल में आए, ऐसे ऊंचे आए और ऐसे ऊंचे बनकर आए कि अल्लाह ने उनके सरापा को नूर फरमाया। किसी नबी के बारे में नूर नहीं फरमाया। हुजूर की बहुत सी सिफतें हैं, उसमें एक रहमतुल लिल आलमीन की है। किसी नबी को रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा गया, किसी नबी को नूर नहीं कहा गया। मेरे मुस्तफा नूर बनकर आए, यही हमारा अकीदा है और अकीदा रहेगा। हम तो पहले से कहते आए हैं कि मुस्तफा का बदन नूर ही नूर है। हम तो कहते हैं, मेरा शेर है जो अभी मदीने में का, हम तो कहते हैं, कहते रहेंगे सदा इंशाअल्लाह। हम तो कहते हैं, कहते रहेंगे सदा, हम ही नहीं कि हमारी नस्ल भी कहती रहेगी। हम तो कहते हैं, कहते रहेंगे सदा, मुस्तफा का बदन नूर ही नूर है, अर्श से फर्श तक नूर ही नूर है। ये अर्श जमीन से लेकर फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंचो, है किसी में ताकत आसमान पर जाने की? मैं दावा करता हूं मीलादुन नबी के साथ में जमीन से उठकर जाने की अगर ताकत है तो अर्श के नीचे सारे आसमानों पर घूम करके आओ और तुम्हें मालूम होगा आमद मुस्तफा नूर ही नूर है, यहाँ भी नूर वहां भी नूर नजर आएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में आए नूर बनकर। हम कहते हैं कि अगर हम अंधेरे में हैं तो अंधेरे को भगाना यह है कि नूर से ताल्लुक पैदा करें। नूर से ताल्लुक पैदा कर लोगे तुम भी जगमगा जाओगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चिराग अगर बुझा हुआ है तो रोशनी मिलेगी? पहले चिराग को जलाना पड़ेगा ना, तब पूरे घर को नूर मिलेगा। और चिराग है ही नहीं किसी के पास तो रोशनी भी नहीं मिलेगी। आप बोलेंगे बहुत पुरानी जमाने की बात, चिराग नहीं बल्कि आज लाइट की जरूरत है। तो चलो बल्ब जिसके यहाँ है उसका घर रोशन हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। मैं बोलता नहीं होगा, इलेक्ट्रीशियन के दुकान में कितने बल्ब होते, क्यों नहीं रोशन होता रात? तो फिर आपका दिमाग बोलेगा नहीं, खाली बल्ब रखने से रोशनी नहीं मिलती, उसको पलक में घुसाना पड़ता और खाली पलक में लगाने से रोशनी नहीं मिलेगी, उस पलक को भी कनेक्शन देना पड़ेगा, उस कनेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, मेन फ्यूज तक ले जाना पड़ेगा, वहां से भी काम नहीं चलेगा, उसको बाहर के पोल से ज्वाइन करना पड़ेगा और बाहर के पोल को ट्रांसफार्मर से मिलाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को सब स्टेशन से मिलाना पड़ेगा और सब स्टेशन पावर हाउस से मिलेगा। इतनी निस्बत के बाद तब जाकर के मिस्टर बल्ब जुग 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 कर रहे हैं, ऐसे नहीं है पूरी सीरीज उठा के चाइना, पूरा चाइना लेके आ जाओ, चाऊ माऊ करेंगे, रखने की जगह नहीं रहेगी, रोशनी नहीं आएगी। लेकिन अगर रोशनी लेनी है तो तुमको इतनी निस्बतों को हासिल करना पड़ेगा, असल नूर पावर हाउस में है लेकिन रोशनी तुम्हारे घर में आ रही है, ये सिर्फ निस्बत का कमाल है। नूर तो अल्लाह ने अपने हबीब को बना देने, अब कब्र में भी रोशनी चाहिए ना, दिल में भी रोशनी चाहिए, हर जगह आपको रोशनी रोशनी चाहिए, तो आप निस्बत जोड़ेंगे कि नहीं? कहां मदीना जाके जोड़ेंगे? अरे नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फसलू अहल जिक्र, और फरमाया है कूदू मासादीन, इल्म वालों से पूछो और महबूब बंदों से अपने कनेक्शन जोड़ो। ये महबूब बंदे क्या हैं? जो छोटे छोटे पीर हैं ये घरों के सामने पोल की तरह, और ये पोल के बाद ट्रांसफार्मर है, ये बड़े बड़े औलियाए किराम हैं, और ये बड़े बड़े औलियाए किराम सब स्टेशन से मौलाए कायनात से जुड़े हुए, और मौलाए कायनात का ताल्लुक नबी से है, अली का ताल्लुक नबी से है, जितने औलियाए किराम हैं सभी का ताल्लुक अली से है, और लाली का ताल्लुक नबी से है, और तुम्हारा ताल्लुक वली से है, तो ये रोशन उसी वक्त दिल होगा जबकि इतनी निस्बतें तुम्हें हासिल हो। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाकर भेजा है, आज आपको नूर लेना है और खुराफात से दूर रहना है। मौलाना चिल्ला चिल्ला के थक गए, हम तो पहले से बोले डीजे मत बजाओ, लेकिन नहीं मानते थे। अब अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, कानून बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। डीजे बनाओगे तो अंदर कर दिए जाओगे, डीजा बजाया कि तीजा हुआ, समझे? टीजा करवाना है क्या अपना? नहीं, न डीजे बजाओ न टीजे करवाओ, नतीजे क्या निकलेंगे? अच्छा ही निकले। हम कह रहे थे तो नहीं मान रहे, शरीयत कह रही थी तो नहीं मान रहे, अब डंडा आया मोदी का तो सबकी गोदी ढीली पड़ गई, अब नहीं बजाएंगे। फरिश्ते बैठे थे तुम्हारे कंधे पर, डीजे नहीं सुन रहे थे? काश के तुम इनके रब के खौफ से डीजा बंद करते तो इबादत बन जाती। आज तो जेल से डरकर बंद कर रहे, चलो बंद करो कैसे भी, अल्लाह अब भी तुमको समझ दे, डंडों से डरकर तुम कोई काम करो नहीं, अल्लाह से डरकर काम करो, मुस्तफा से मोहब्बत करके काम करो। अब कभी डीजे बजाओगे? जिसको बजाना है वो हाथ को उठा दे, एक हाथ नहीं उठा रहा मौला, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं सबको हर बुराइयों से किनारा करने की तौफीक। ये मीलादुन नबी की सौगात आपको दे रहा हूं, ऐ लोगों मैं रोजाना नहीं आने वाला, आ गया मालूम नहीं आइंदा साल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आज मैं कलेजे की गहराइयों से अपना खूने जिगर पिलाके जा रहा हूँ। 39 साल हो गए आपसे मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बहुत सी विदतों को आपने छोड़ा, बहुत से गुनाहों को छोड़ा। अब तय कर लो कि हमारा 40वां साल बुराइयों से पाक होकर के गुजरेगा। हम बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे। और कितने दुख की बात है, नबी के नाम का जुलूस और शैतान की बांसुरी बजाते ये जितने गाजे बाजे हैं, हुजूर फरमाते हैं मज़ामीरुश शयातीन, ये शैतान की बांसुरी है। नाम मुस्तफा का है और काम शैतान का हो। चिल्ला चिल्ला के हम बूढ़े हो गए। चलो हम गवर्नमेंट का इतना एहसान मानते हैं कि ये डीजे को बंद करवाया। ऐ गवर्नमेंट के लोगों, ये सब झांझ मजीरा बंद करवा दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। खुद ब खुद सबके नाड़ियां ढीली हो जाएगी। हम बोलते हैं, बोले बुड्ढा तो हमेशा बोलता ही है, इसका काम है बोलना, अपना काम है धपक धुपक कर। नहीं मेरे दोस्त, कब्र से लेकर हसरत तुम्हें खुदा को जवाब है। इसलिए बुराइयों से बचो, नमाजें पढ़ो, मुस्तफा की सुन्नत को अपनाओ और फिर देखो कज्जा अकुल मिन अल्लाह, नूर की रोशनी तुम्हारे दिलों में किस तरह आती है। रब्बे करीम हम सबको यही तौफीक अता फरमाए। और मौलाना ने जो
तो वो अंसार भाई ने अपने अहबाब में ऐलान करवाया था कि सब लोग गुरुदेव पाक पढ़ पढ़ करके हम तक मैसेज करें, तो उनके पास जो मैसेज आए वो मैसेज उन्होंने यहाँ भेजा कि हुजूर अशरफुल फुकहा उन तमाम भाइयों के पढ़े हुए दुरूद को और एक कुरान पाक को। और एक बहन ने 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ी, उन्होंने अर्ज किया कि मेरा 1.25 लाख आयत करीमा का खत्म। और जो अंसार भाई ने भेजा है 66,66,666 दुरूद पाक, जो अभी इस साल सवाब भी हो जाएगा ये जितना जो कुछ पढ़ा। और मदीनतुर रसूल में ईमान के साथ मौत अता फरमाए। अब सिर्फ हल्का जिक्र होने जा रहा है, आप सब चार जानो होकर बैठ जाए पालकी मारकर। जिक्र का तरीका यह है कि चार जानो होकर के बैठा जाए, चार जानो होकर बैठ जाए और हजरत जिक्र करवाएंगे। मर्दों की आवाज होगी, माँ बहने आवाज बुलंद न करें इतनी आवाज से कि आप खुद सुन सकें। आप लोग बुलंद आवाज से बोलने लगोगी तो पूरा मजमा डिस्टर्ब हो जाएगा।
وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق يا مؤمن يا مؤمن صلى الله تعالى عليه وسلم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। सब लोग तीन तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबी व सल्लम। मेरे साथ पढ़िए नॉर्मल आवाज से, الله رب محمد صلى عليه وسلم 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 الله رب محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन
ہماری 12 روزہ تقریبات کو اپنے کرم سے مولا اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہم میں خلوص نہیں تھا. پروردگار عالم ہمارے ذہن و فکر میں اتنی صفائی نہیں تھی, لیکن ہم نے ذکر اس لیے کیا ہے مولا اس نور کا صدقہ دے دے جس کو تو نے 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو بھیجا ہے. ہمارے دلوں کو پرنور بنا دے, عالمین ذہنوں کو صافی بنا دے, زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنا دے. الہ العالمین اپنے کرم سے ہماری سب نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم نے 12 دنوں تک جو دعائیں کی ہیں مولا انہیں شرف قبول عطا فرما. آج اس مبارک رات میں تیرے بندوں کا جب میں غفیر ہے, جو اس میں تیرا محبوب بندہ ہو, سید ہو, عالم ہو, تیرے محبوب اور مقرب بندوں میں جس کا نام ہے مولا, اس کی مقبولیت اور اس کی ولایت کے صدقے میں تیری بارگاہ میں محبوبیت کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں مولا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما مولا. آج ہم ظلم و ستم کے پنجے میں گرفتار ہیں مولا, تو رحیم و کریم ہے, رحم فرما, ہمارے حال کو بدل دے, जिल्लत को इज्जत में तब्दील कर दे, कमजोरी को ताकत में तब्दील फरमा दे। मौला जो रुसवा हो रहे हैं उन्हें इज्जत का आला मकाम अता करना, बेरोजगारों को रोजियां दे दे, रोजगार वालों की तजारतों में बरकतें अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। मेरा हलालमीन जो दुनिया से रुख्सत हो गए हैं सबके कब्रों को रहमतों नूर से भर दे, और तमाम अहले ईमान को बख्श दे जो जिंदा हैं उन्हें सेहत व आफियत अता फरमा, दारैन की सआदतें अता फरमा। मौला हम मांगने के लायक नहीं है लेकिन तूने वादा किया है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा तेरे हबीब का सदका। मौला तेरे गौसो ख्वाजा का सदका, तेरे महबूब बंदों का सदका, या अल्लाह मशाइख और उलमा का सदका। मौला हम कमजोर हैं हमें तवानाई दे, मौला परेशानियों से पूरी मिल्लत गुजारे, हमारे शरीयत के कानून पर हाथ साफ किया जाए। मौला हम हिफाजत नहीं कर सकते, मौला तू हाफिज और नासिर है, हमारी मिल्लत की हिफाजत कर, मौला दीन हनीफ की हिफाजत कर। मौला जो हमारी बच्चियां घरों में बगैर शादी के कराह रही थी उनकी शादी का इंतजाम फरमा। या अल्लाह जो बेराह गए हैं उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चला, मौला हम गुनाह का गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत का नूर अता फरमा, अपने इन कमजोर बंदों को तवानाई दे, बिखरे हुए मुसलमान को मुनज्जम फरमा दे। या अल्लाह मसलके अहले सुन्नत को फरोग अता फरमा, हमारे उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमा, जितने सुन्नी इदारे हैं उन्हें हवाते से रोजगार से बचा ले। इलाहलालमीन तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा, अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा। इलाहलालमीन हमारी बहू बेटियों को इज्जत व आबरू अता फरमा, हमारी आजादी और बेराहरवी का नतीजा है मुस्लिम खानदान की बच्चियां गैरों की तरफ जा रहे हैं, मौला उन्हें बचा ले, इस्लाम की आबरू बचा ले। फातिमा गैरों की कनीजों की हिफाजत फरमा, माँ बाप को इलाहलालमीन सोचने और समझने की तौफीक दे, ये मादर और पितर आजादी का माहौल खत्म फरमा दे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू की मौला हिफाजत फरमा, हमारे माहौल में सुन्नत नबी का जो दौर दौरा फरमा दे, नूर नबूवत की रोशनी अता फरमा दे। इलाहलालमीन इस मोहल्ले के जिन नौजवान बूढ़ों ने तेरे हबीब की जिक्र की महफिल सजाई है उन सब नौजवानों को शऊर अता फरमा, दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो दो इस जलसे में हाजिर होते रहे मौला कदम कदम पर हजार नेकियां उनके नाम आमाल में लिख दे, और हम सबके आखिरत के लिए निजात का जरिया बना दे। हमारा खात्मा बेखैर फरमा, कब्र में सवाल जवाब आसान फरमा, इलाहलालमीन हमारी कब्रों को वसी फरमा दे। या अल्लाह हमें ईमान सुन्नियत और मसलक पर सवाब पदवी अता फरमा, तेरे अहले बैत का सबका, मौलाए कायनात का सबका, फातिमा जहरा के मुकद्दस आदमों का सबका, हसन और हुसैन का सबका, अबू बकर उमर का सबका, उस्मान और हैदर का सबका, बिलाल के इश्क का सबका, सहेब रूमी की वफादारी का सबका, अम्मार की जानसारी का सबका, सहाबे किराम की महब्बतों का सबका। मौला सबके दिलों में महब्बत रसूल जागुजी फरमा दे। या अल्लाह हमें दीन हक पर साबित कदम रख, गुमराहों की गुमराही जैसे महफूज फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर, हमारे खाली हाथों और दामनों को गौहरे مراد سے بھر دے. اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلمة الصلاة والسلام.
يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء انت شفيعنا سلام عليك يا شفيع البرى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك. هذا قولنا لله الشفيع هذا
Oh, Thank you.